पृष्ठ संख्या 49, अध्याय 5, राग देवसाक। सृष्टि की सभी वस्तुओं में परिवर्तन होना प्रकृति का नियम व गुण है। इस परिवर्तन से जो एक नयापन दिखता है वह वास्तव में नया नहीं वरन असंख्य बार दोहराया हुआ है। जिस भांति कुम्हार की चक्की जिस स्थान से घूमना प्रारंभ करती है और शीघ्र गति से बार बार चक्कर लगाकर उस स्थान पर पुनः आती रहती है, उसी प्रकार परिवर्तन सृष्टि का चक्कर है। कोई भी विधा या वस्तु या संशोधन व खोज से प्राप्त किया हुआ मंत्र तंत्र यंत्र नया नहीं है। ये वस्तुएं कुछ दिन प्रचार में रहने के बाद अपने ही आप लुप्त होने लगती हैं तथा समय पाकर प्रकाश में आ जाती हैं। संगीत क्षेत्र में भी रागों के संबंध में ऐसा ही समझना चाहिए। साख के वर्तमान प्रकार समय में लुप्त से हो रहे हैं, परंतु किसी समय ये राग प्रचार में अत्यधिक रहे होंगे। जिस भांति बिलावल, सारंग, बिहाग, कल्याण इत्यादि इन रागांग रागों का अपना एक अंग है और इन अंगों के द्वारा इनके बहुत से प्रकार बनते हैं, उसी प्रकार साख के कई प्रकार हैं, यथा राम साख, देव साख, भव साख और लच्छा साख या लक्ष्मी साख। साख के इन प्रकारों में से देव साख और लच्छा साख यानी लक्ष्मी साख का स्वरूप तथा इनके संबंध में कुछ तथ्य एवं स्थायी अंतरे उपलब्ध हैं, परंतु राम साख एवं भव साख का तो आजकल के आधुनिक संगीतज्ञ नाम भी नहीं जानते हैं। वस्तुतः राम साख व भव साख राग बहुत पुराने हैं। इनकी रचना का समय 500 वर्ष पूर्व ही कहा जा सकता है। आज से करीब 70 वर्ष पूर्व तो स्थिति यह थी कि जिस संगीतज्ञ के पास इन चारों साख का संग्रह रहता था उनकी संगीतज्ञ समाज में विशेष प्रतिष्ठा रहती थी, परंतु आज ये राग संगीत समाज से उठ से गए हैं। कुछ पुराने उस्तादों के पास इनका संग्रह था, परंतु दुर्भाग्यवश वे आचार्यगण आज काल कवलित हो चुके हैं एवं संकुचित हृदय के कारण उन लोगों ने इन अप्रचलित रागों का आदान प्रदान भी नहीं किया। अपने पूज्य गुरुवर पंडित भोलानाथ जी भट्ट की असीम अनुकंपा से मुझे इन रागों के स्वरूप आदि पर जो कुछ सुनने और सीखने का सुअवसर मिला है तथा इन रागों से जो ध्रुवपद व अन्य गीत मिले हैं, उसी आधार पर मैं प्रस्तुत पुस्तक में साख के इन चारों प्रकारों का वर्णन करूंगा। आशा है इससे सभी पाठक अवश्य लाभान्वित होंगे। पृष्ठ संख्या 50। सर्वप्रथम साख अंग के इन चारों रागों के रागांगों की विशिष्ट जानकारी आवश्यक प्रतीत होती है। साख अंग के इन चारों रागों के गायन समय का वर्णन करते हुए राग कल्पद्रुम नामक ख्याति लब्ध ग्रंथ में इन्हें निम्न नामों से संबोधित किया गया है, यथा लच्छा साख भूषाख पुनी राम साख देशाख सुहा सुघराई शुही शुभा देवगंधारी भाक। उपरोक्त दोहे में भूषाख व देवशाख नामों का प्रयोग हुआ है। यही राग आज भवशाख व देवशाख के नाम से पुकारे जाते हैं। इन रागों के साथ साख उपसर्ग लगा हुआ है जो साख्य शब्द का अपभ्रंश है। साख्य शब्द से साखी और अब साख के नाम से ही अभिहित किया जाता है। कहीं कहीं देवसाग के स्थान पर देवसाग पुकारते हुए भी सुना जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन एवं गुरुजनों से विचार विनिमय के आधार पर इन रागों के संबंध में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन चारों रागों में देवसाख, रामसाख एवं भवसाख ये तीनों ही राग कान्हड़ा अंग के अंतर्गत आते हैं। लच्छा साख या लक्ष्मी साख बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। इन चारों साखों का अपना एक विशेष अंग यह है कि इनमें ग प एवं ग म रेसा की स्वर संगति मुख्य रूप से प्रयुक्त होती है। कान्हड़ा अंग के देवसाख, रामसाख एवं भवसाख में कोमल गंधार और बिलावल अंग के लच्छा साख में शुद्ध गंधार का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त इन रागों के लक्षण विषयक विस्तृत जानकारी इनका वर्णन करते समय दी जाएगी। प्रथमतः मैं यहाँ देवसाख का परिचय दूंगा। राग देवसाख काफी थाट जन्य है। इसमें गंधार, कोमल, निषाद दोनों एवं अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। प्रस्तुत राग में धैवत वर्जित है, अतः इसकी जाति शाडव शाडव है, परंतु कतिपय विद्वान अवरोह में धैवत का प्रयोग करते हैं और इसकी जाति शाडव संपूर्ण मानते हैं। प्रस्तुत राग में पंचम वादी तथा षड्ज संवादी है। इस राग का गायन समय दिन का द्वितीय प्रहर है एवं इसका संप्रकृत राग मुख्य रूप से सुगरई कान्हड़ा है। जहाँ तक प्रस्तुत राग में अन्य रागों के मिश्रण का प्रश्न है, इसके स्वरूप को दृष्टिपथ में रखते हुए ऐसा ज्ञान होता है कि इसमें सारंग और कान्हड़ा का मिश्रण किया गया है, यथा म रे प म कोमल नी प तार सा एवं कोमल नी प शुद्ध नी तार सा। इस प्रकार आरोह में अधिकतर सारंग और अवरोह में तार सा कोमल नी प एवं तार सा प कोमल नी प कोमल ग म रे सा। इन्हीं दोनों रागांग रागों को परस्पर मिलाकर कोमल ग प संगति का मिश्रण करके प्रस्तुत राग का सृजन किया गया है। जैसा कि इस राग के स्वरूप से स्पष्ट है, यथा सा म रे प म कोमल नी प तार सा कोमल नी प म कर्युक्त कोमल ग अ प कोमल ग म सा कर्युक्त रे सा। रे म कर्युक्त कोमल ग अ प कोमल ग म रे सा। प म कोमल नी प शुद्ध नी तार सा। तार सा तार रे तार सा प कोमल नी प म कर्युक्त कोमल ग म कर्युक्त कोमल ग प कोमल ग अ म रे प म कोमल नी प म कर्युक्त कोमल ग अ प कोमल ग म सा कर्युक्त रे सा। पृष्ठ संख्या 51। प्राचीन तथा अप्रचलित होने के कारण इन रागों के स्वरूप के संबंध में मतांतर होना स्वाभाविक है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने अपने ग्रंथ क्रमिक पुस्तक मालिका के छठे भाग में देवसाख में ग प स्वर संगति को रागवाचक कहा है, परंतु इस पुस्तक में जो स्थाई अंतरा दिया गया है उसमें ग प स्वर संगति का अभाव है। प्रस्तुत देवसाख के अन्य प्रकारों रामसाख, भवसाख, लच्छासाख में ग प स्वर संगति के प्रयोग के संबंध में गुरुजनों ने भातखंडे जी के ही मत का अनुमोदन किया है। इस राग के पूर्वांग में मध्य षड्ज से पंचम की ओर जाने के लिए सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ प व सा म रे प म कोमल नी प तथा द्रुत तानों में मंद्र शुद्ध नी सा रे म प इस प्रकार के स्वर समूहों का प्रयोग किया है। उत्तरांग में म प कोमल नी तार सा कोमल नी प या म प कोमल नी प तार सा प कोमल नी प इस भांति पंचम तार षड्ज व तार षड्ज पंचम की संगति भी कानड़ा के अन्य प्रकारों की भांति प्रयुक्त होती है। आलाप एवं तानु की समाप्ति भी कानड़ा के अन्य प्रकारों की भांति कोमल ग म रेसा स्वर समूह के द्वारा ही होती है। जो लोग इसमें धैवत का प्रयोग करते हैं वह सुघराई की भांति कोमल नी प म प ध कोमल नी प व तार सा ध कोमल नी प इस प्रकार धैवत का अल्प प्रयोग करते हैं, परंतु देवसाख का यह प्रकार प्रचार में नहीं के बराबर है। कतिपय विद्वान प्रस्तुत राग के आरोह में ऋषभ को वर्जित मानते हैं। उनका कहना है कि इस राग में म रे प म कोमल नी प तार सा यह जो आरोह की वक्र गति है यह अवरोहात्मक है, अतः ऋषभ को आरोह में वर्जित मानकर इसकी जाति औडव शाडव मानते हैं। परंतु मेरी राय में इस प्रकार की वक्रता के आधार पर ऋषभ को वर्जित मानकर इसकी जाति औडव शाडव मानना उचित नहीं है, क्योंकि अन्य कई राग यथा गौड़सारंग कामोद इत्यादि राग में भी इसी प्रकार की चलन है। ऐसी स्थिति में उसके आरोह में किन किन स्वरों को वर्जित मानेंगे? इसके अतिरिक्त देवसाग की यह अवरोहात्मक वक्रता द्रुत तानों में आरोहात्मक रूप यथा मंद्र शुद्ध नी सा रे म प धारण कर लेती है। इसके अतिरिक्त आरोह में ऋषभ के प्रयोग की पुष्टि सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ प स्वर समूह के द्वारा भी हो जाती है, अतः इसकी जाति षाडव षाडव ही मानना अधिक उचित व तर्क संगत है। पृष्ठ संख्या 52। साख के जो अन्य प्रकार हैं जैसे राम साख भव साख एवं लच्छा साख, इनमें लच्छा साख तो बिलावल अंग का राग है, इसलिए देव साख उससे भिन्न ही दिखता है। राम साख में दोनों गंधार तथा भव साख में दोनों धैवत का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त ये दोनों राग रात्रिगेय हैं, इस कारण इन दोनों रागों से भी देवसाख भिन्न है। पंच कान्हड़ा में से मुख्य रूप से यह सुघराई कान्हड़ा के निकट का राग है, परंतु कोमल ग प की संगति के कारण देवसाख सुघराई से भी अलग ही दिखता है। इस प्रकार यह प्राचीन राग अपने स्वतंत्र नियमों के कारण अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है। स्वरों का प्रयोग तथा स्थान। प्रस्तुत राग में सर्वश्रेष्ठ स्वर षड्ज को संवादित्व प्राप्त है। ऋषभ का प्रस्तुत राग में म रे प म कोमल नी प तार सा इस प्रकार वक्र प्रयोग के अतिरिक्त सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ प व द्रुत तानों में शुद्ध मंद्र नी सा रे म प इस प्रकार इसका सरल प्रयोग भी होता है। अवरोह में कानड़ा अंग के अन्य प्रकारों की भांति कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा इस प्रकार ऋषभ षड्ज से स्पर्श युक्त होकर प्रयुक्त होता है। इन प्रयोगों में ऋषभ दीर्घ व न्यास तथा अभ्यास रहित होने के कारण प्रस्तुत राग में इसका अनाभ्यास अल्पत्व ही दृष्टव्य है। प्रस्तुत राग में गंधार सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ प म कड़युक्त कोमल ग म कड़युक्त कोमल ग म रे सा, इस भांति कान्हड़ा अंग से प्रयुक्त होता है। म रे प म स्वर समूह के प्रयोग में गंधार का लंघन भी होता रहता है। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि गंधार का प्रस्तुत राग में आंदोलित दीर्घ तथा अभ्यास बहुत्व के साथ साथ म रे प म कोमल नी प सारंग अंग के इस स्वर समूह के प्रयोग से लंघन अल्पत्व भी हो जाता है। मध्यम का प्रस्तुत राग में सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ प व प म कड़युक्त कोमल ग अ म रे सा तथा म रे प म कोमल नी प इस प्रकार प्रयोग होता है, अर्थात कोमल ग प व प कोमल ग स्वर संगतियों में इस स्वर का बार बार लंघन होता है। इसके अतिरिक्त म रे प म स्वर संगति में मध्यम का स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग है, अतः प्रस्तुत राग में मध्यम का वक्र प्रयोग एवं लंघन व अनाभ्यास अल्पत्व ही मानना चाहिए। पंचम का प्रस्तुत राग में आंशिक तथा पूर्ण न्यास बहुत्व है, यथा सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ प म कोमल नी प कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा, म रे प म कोमल नी प तार सा प कोमल नी प म कड़युक्त कोमल ग म कड़युक्त कोमल ग प कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा इत्यादि। इस राग में शुद्ध एवं कोमल दोनों ही निषाद का प्रयोग होता है, परंतु शुद्ध निषाद की अपेक्षा कोमल निषाद का प्रयोग अधिक होता है, यथा म प कोमल नी प तार सा प कोमल नी प कोमल नी प म प म कड़युक्त कोमल ग म कड़युक्त कोमल ग प म कोमल नी प म प तार सा प कड़युक्त कोमल नी प इत्यादि। कभी कभी कोमल निषाद का प्रयोग आरोह में भी म प कोमल नी तार सा इस प्रकार होता है। शुद्ध निषाद केवल आरोह में ही म प कोमल नी प शुद्ध नी तार सा इस स्वर समूह में प्रयुक्त होता है। म प तार सा व तार सा प की स्वर संगति में दोनों ही निषादों का लंघन भी हो जाता है। इस प्रकार इस प्रयोग से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत राग में निषाद का अनाभ्यास एवं लंघन दोनों ही प्रकार का अल्पत्व है। पृष्ठ संख्या 53। आरोह सा रे म कड़युक्त कोमल ग अ प म प कोमल नी प शुद्ध नी तार सा, अवरोह तार सा प कड़युक्त कोमल नी प म कड़युक्त ग कोमल अ म सा कड़युक्त रे सा। मुख्य चलन सा म रे प म कोमल नी प म कड़युक्त कोमल ग म कड़युक्त कोमल ग प म कड़युक्त कोमल ग म सा कड़युक्त रे सा।